ओम शांति। ईसा के लगभग 300 वर्ष पूर्व यूनान में एक फकीर कहो या योगी कहो या सन्यासी था जिसका नाम था डाइजेनीस। वह एक अपने ही तरीके का व्यक्ति था, किसी को मानता नहीं था। जो समाज की परिपाटी थी, रूढ़िवादिता थी, सबके विरोधी था, एक विद्रोही था अपने आप में। वो अजीब अजीब हरकतें दिन भर करते रहता था। कभी दिया लेके, वो लालटेन लेकर दिन भर निकलता था। लोग हंसते थे, इतने उजाले में तुम दिया लेके घूम रहे हो। वो कहता था, मैं सच्चे आदमी की तलाश में हूं, सब झूठे हैं। नंग धड़ंग घूमता था, कभी भी कुछ भी करता था, पर उसकी बातें बड़ी गहरी थी, बहुत गहरी। और वो जो कहता था बहुत चोट करने वाला कहता था, इसके लिए लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। लोग तो वो सुनना चाहते हैं जो सदियों से सुनाया जा रहा है, कोई बीच में आके कुछ नया सुनाए वो पसंद नहीं आता था। वो खुलेआम सुकरात, प्लेटो, इन सब का विरोध करता था। उसका एक सिकंदर के साथ भी संवाद है कि क्या क्या हुआ उसके जीवन में। घटना है कि दिखाया गया, एक बार उसको वैसे ही पड़ा रहता है तो कुछ डाकू वहां से गुजरते हैं, और वो डाकू उसको देखते हैं, सात आठ, सोचते हैं बड़ा तगड़ा आदमी है, इसको पकड़ के ले जाएंगे। और वहां पर दास प्रथा बहुत थी उस समय, और वो सोचते हैं इसको हम बेच देंगे। तो वो पकड़ते हैं उसको, डाइजेनीस को पकड़ते एक साथ आके सब के सब। वो कहते, पकड़ क्यों रहे हो? वो कहते, हम तुमको लेके जाएंगे, और उसको बांध देते हैं। वो कहते, बांधने की जरूरत है, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चलता हूं। तुमको बांधने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तो वो फिर भी बांधते उसको ले जाते हैं मार्केट बाजार में, यूनान ग्रीस में। तो वहां पर जैसे वो बोली होती है ना, दास बिकते हैं, बेचे जाते थे किसी जमाने में, ऑक्शन, किसी जमाने में दास बेचे जाते थे। तो यहां पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कहते, वो खुद ही चिल्लाने लगता है, हे गुलामो, अगर मालिक बेचना है तो इधर खड़ा है। वो क्या कहता है, हे गुलामो, यदि तुम्हें मालिक चाहिए तो यहां मैं खड़ा हूं। तो ये बात है स्वतंत्रता की। वो मन से गुलाम नहीं था, मन से स्वतंत्र ही था। और वो कहता था कि मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मेरा मन स्वतंत्र है, मैं मुक्त ही हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो संडे की जो अव्यक्तवाणी थी, जिसमें बाबा ने कर्मातीत की परिभाषा बताई, और सारी परिभाषा में एक ही शब्द है, मुक्ति। मुक्ति, गुलामी नहीं, मुक्ति। जहां गुलामी आ जाती है वहां कर्मातीत बन नहीं सकते। स्लेवरी, बॉन्डेज, दासता, सर्फडम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, यह जो भी गुलामी की स्थिति है वो मुक्ति की अवस्था नहीं है, वो कर्मातीत अवस्था नहीं है, विदेही अवस्था नहीं है। तो इस अव्यक्तवाणी में मुक्ति किन किन चीजों से है और वो कर्मातीत अवस्था कैसे है, उसकी चर्चा बाबा ने की है। तो सबसे पहली चीज, ऐसी नौ बातें देखेंगे हम जो इस मुरली में आई है, सभी एस से चालू होगी। सेल्फ प्राइड, जिसको बाबा ने कहा है हद का मेरे, मेरे का देह अभिमान। हद का मेरे, मेरे का देह अभिमान से मुक्ति अर्थात कर्मातीत। ये सारी कर्मातीत की परिभाषा है। कर्मातीत अर्थात क्या? कर्मातीत अर्थात जहां हद का मेरापन है या मैंपन है, वहां कर्मातीत बन ही नहीं सकते। हद का मैपन अर्थात छोटा समयपन, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे लोग, ये मेरी वस्तु, मेरा स्थान, मेरी भाषा, मेरा डिपार्टमेंट, सब कुछ छोटा छोटा मेरा, ये जो हद वाला मेरापन है, इससे मुक्ति अर्थात कर्मातीत। और जो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है हद के मेरेपन से मुक्ति की, वो कर्मातीत नहीं बन सकता। जैसे वो उदाहरण दिखाते हैं ना, वो मेंढक, समुद्र का मेंढक आ जाता है कुएं के मेंढक के पास। कुएं का मेंढक पूछता है, कहां से आ रहे हो? वो कहता है, समुद्र से। कहता है, समुद्र कितना बड़ा है? समुद्र का चूहा कहता, मेंढक कहता है, बहुत बड़ा। कुएं का मेंढक छलांग लगाता है, इतना? अगर इतना थोड़ी ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कुएं का मेंढक बड़ा छलांग लगाता है, इतना? इतना है क्या समुंदर? वो कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इतना थोड़ी होता है, समुंदर बहुत बड़ा है। फिर वो कहता है, और लंबी छलांग लगाता है कुएं में, इतना? वो कहता है, तुम सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा समुंदर है। तो समुद्र, कुएं का मेंढक कहता है, जाओ यहां से, यही समुंदर है। उसके लिए ये जो कुआ है बस यही समुंदर है, ये इतनी ही दुनिया, इसके परे कोई दुनिया है ही नहीं। उसे पता ही नहीं कि यहां भी कोई समुंदर है, कोई दुनिया है बेहद की। हदों में फंसे हुए लोग हैं, ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, बस। उसको कहते हैं कूपमंडूक, इस कहानी को कहते हैं कूपमंडूक। बस अपना सोचना, बस उसी छोटे से बिल में रहना, और वही संसार है। बाबा ने कहा है, तुम भले एक स्थान पर हो, पर तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। अमेरिका परिवर्तक नहीं, इंडिया परिवर्तक नहीं, लंदन परिवर्तक नहीं, तुम कौन हो? विश्व परिवर्तक। तो बेहद की, तो सबसे पहली मुक्ति है, या सबसे पहली परिभाषा जो दी है, सेल्फ प्राइड जिसको हम कहेंगे, हद के मेरे मेरे से मुक्त। दूसरा है स्वार्थ, सेल्फिशनेस, दोनों ऐसे, स्वार्थ कहो या सेल्फिशनेस कहो। बाबा ने कहा, जब तक, इसमें भी बड़ी एक अच्छी बात कह दी जो बहुत कम आई है मुरली में, स्वार्थ में कहा लौकिक और अलौकिक स्वार्थ। अलौकिक स्वार्थ क्या है? अलौकिक स्वार्थ, उससे भी मुक्ति। जब तक अलौकिक स्वार्थ है तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते। और आगे बोला, कर्म और संबंध के स्वार्थ से मुक्ति, इन चारों स्वार्थ से मुक्ति अर्थात कर्मातीत। अलौकिक स्वार्थ क्या है प्रभाकर भाई? अलौकिक स्वार्थ, यहां दो व्यक्ति कभी एक दूसरे से मिलते हैं बिना स्वार्थ के? संसार में दो व्यक्ति दोस्त होते हैं, स्वार्थ रहता है उसमें कहीं ना कहीं, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, थोड़ा तो स्वार्थ है ही, कुछ ना कुछ तो है। बाबा कह रहे, कर्मातीत अर्थात वो अवस्था जिसमें लौकिक और अलौकिक दोनों स्वार्थ ना हो। अलौकिक स्वार्थ क्या है? अलौकिक स्वार्थ वैसा भी और वैसा भी, सतयुग में भी कुछ मिल जाए, यहां कुछ करे, वो भी अलौकिक स्वार्थ है। एक्सपेक्टेशन, सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन, यहां हम सेवा करें तो हमको क्या मिल जाए? थोड़ा बहुत मान छन मिल जाए तो, हाँ भैया, ये वाले, ये अलौकिक स्वार्थ, इनको थोड़ा ज्यादा ध्यान दो तो थोड़ा कुछ मिल जाए फ्री। और अलौकिक स्वार्थ क्या है संजय भाई? अलौकिक स्वार्थ, स्वार्थी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कल्याणकारी स्वार्थ। किसका कल्याण? हमारा ही है, दूसरों का? तो हाँ, जिसकी सेवा करेंगे वो मेरा सेवा करेंगे। इसको देखने जाएंगे हॉस्पिटल में, बीमार है तो हम जब बीमार है तो वो आना चाहिए ना। जितने ज्यादा लोग आते उतना अच्छा भी तो लगता है। वो तो है, वो भी स्वार्थ है, अपना कल्याण की भी भावना है उसमें। स्वार्थ तो समाया हुआ है सब में, कूट कूट के भरा हुआ है। हर एक व्यक्ति कुछ भी करता है उसके पीछे स्वार्थ है। शुद्ध स्वार्थ कहो या अशुद्ध स्वार्थ कहो या भाषा को कितना भी उसको घुमाओ, परंतु स्वार्थ तो है ही है। इसके लिए तो कहा कर्मातीत अवस्था अर्थात स्वार्थ से मुक्ति, स्वार्थ से मुक्ति अर्थात संपूर्ण बनना, ये परिभाषा। बाबा कहते हैं कि मुझे निष्काम सेवाधारी केवल मैं ही हूं, वो मेरे अतिरिक्त तो तुम में से कोई भी निष्काम नहीं है। तुम जो करते हो, हड्डियां भी देते हो ना, धदीची मिसल, उसमें भी तुम हिसाब लगाते हो उधर सतयुग में, हड्डी का एक एक हड्डी तुमने जो दी है। वैसे तो उसी ने सिखाया वो भी कि बाप तुम्हें टेम्पटेशन देते, वो भी तो वही कहता है। हाँ, सुदामा मिसल। तो कर्मातीत वो अवस्था है कि धीरे धीरे आत्मा स्वार्थ कम कम होते जाए, चलो पूरे खत्म ना हो परंतु ज्यादा से ज्यादा अलौकिक होते जाए। बाबा ने चारों बातें कही है, लौकिक स्वार्थ, अलौकिक स्वार्थ, कर्म का स्वार्थ, संबंध का स्वार्थ। इस स्वार्थ से मुक्ति अर्थात कर्मातीत, क्योंकि स्वार्थ गुलामी लाता है। क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है तो जिस हमें सामने के व्यक्ति से कुछ करना है, लेन देन या कुछ भी करना है, तो थोड़ा उसकी चाटुकारिता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, झूठे मीठे बोल बोलने पड़ेंगे। तो स्वार्थ से मुक्ति ये कर्मातीत अवस्था है। ये एक एक जो भी नौ बातें यहां पर है, एक एक बड़ी पावरफुल बात है और सारी कर्मातीत की बात है। और कोई एक मुरली नहीं है, ये ढेर सारी मुरलियों के महावाक्य लिए हुए संकलन है ये सेकंड पार्ट। तीसरा है स्वभाव संस्कार एस। कौन सा स्वभाव संस्कार? बाबा ने कहा जन्म जन्म के हिसाब किताब के स्वभाव संस्कार, या फिर इस जन्म के पुरुषार्थ की रही हुई कमजोरी के व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश जो करते हो वो बंधन है। इससे मुक्ति है कर्मातीत। व्यर्थ स्वभाव संस्कार कहां से बने हैं? जन्म जन्म के हिसाब के कारण कहां से बने हैं? पुरुषार्थ जो किया है इस जन्म में, उसकी जो कमजोरियां रही है उससे निर्मित जो संस्कार है, स्वभाव संस्कार अर्थात कोई हैबिट्स। स्वभाव संस्कार शब्दों को बाजू में रख दो, हैबिट को ला लो, आदत। जैसे आज की मुरली में कहा बाबा ने, तुम्हें कौन सी आदत होनी चाहिए? अशरीर बनने की आदत बनो, अनायास ही उड़ेंगे फिर। नई आदतें निर्माण करनी है, जैसे वो आदतें हो गई है ना, आदत अर्थात एक ही चीज को रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, आदत बन जाती है। उसी तरह अच्छी चीजों को भी रिपीट करते रहो, बार बार चिंतन करते रहो, करते रहो, तो चिंतन की आदत बनेगी। बार बार कुछ लिखने की कोशिश करो तो लिखने की आदत बनेगी। बार बार बोलने की कोशिश करो तो बोलने की आदत पड़ेगी। बार बार योग लगाने की कोशिश करो शरीर से अलग होने की, डिटैच हो जाने की, तो वो आदत पड़ेगी। सब आदत के ऊपर है। तो तीसरा है संस्कार स्वभाव, व्यर्थ स्वभाव संस्कार, जो कि निर्माण हुआ है, हमने ही निर्माण किया है। हमारे संस्कार अभी, हमारी जो नेचर है किसने निर्माण की? अभी हमारी नेचर है हर्ट होने की, दुखी होने की, रोने की, किसने, फीलिंग में आने की, किसने निर्माण किया? हमने ही निर्माण किया। कैसे निर्माण की? बार बार, चाहे ये या विकार की नेचर। विकार की नेचर अर्थात पूरा विकार ही नहीं, एक संकल्प विकार का भी आ जाना हिला देता है चेतना को। तो ये जो आदत है, हड़बड़ी करने की आदत, किसी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति और नॉन मेडिटेटिव, इसमें क्या अंतर है? तो एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा उत्तर लिखा उसमें। एक है योग करने वाला, हमारी भाषा में एक न योग करने वाला, एक मेडिटेशन करने वाला, एक न मेडिटेशन करने वाला। तो उसने लिखा जो मेडिटेशन नहीं करता है वो ऊपर बहुत ऊंची जो बिल्डिंग होती है ना स्काई स्क्रेपर, उससे जब गिरता है तो धड़ाम से नीचे गिरता है और खलास। और जो मेडिटेशन करने वाला है जब ऊपर से गिरता है तो गिनता है कहां तक पहुंचे, अभी तक सब ठीक है, ओके आई एम ओके। फिर थोड़ा नीचे आता है वो कहता है आई एम ओके, अभी भी ठीक है, सब ठीक चल रहा है। पांचवी मंजिल पर पहुंचा, अब तक ठीक है। चौथी तक पहुंचा, अब भी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अभी ठीक है, अभी ठीक है। मतलब योगी की निशानी है कैसी भी परिस्थिति हो वो क्या कहता है, अब तक ठीक है सब, ऑल इज वेल बाबा आई एम ओके। बाबा ने कहा चेकिंग, एक तो ओके करो या तो एक स्ट्राइक थ्रू, वो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आता है ना व्हाट्सएप पर बीच से कट, ये इतना ही उत्तर दो बाबा को, लंबा चौड़ा पत्र मत लिखो, फुर्सत नहीं है। किसके पास बोला है, मुरली में आया है उस दिन, फुर्सत नहीं है। तो एक तो ओके लिखो या तो स्ट्राइक थ्रू, कट कर दो, ओके नहीं। तो ये भी एक स्वभाव है हड़बड़ी करने का, ये भी संस्कार बन गया है ब्लेम करने का दूसरों। हमारे साथ कुछ भी होता है दूसरों को पकड़ के ब्लेम करो, ये एक संस्कार बन गया है। और एक असफलता का एक कारण जो बताते हैं, ऐसी कुछ आदतें, इस पर किताबें भी लिखी गई है, सात आदतें असफल व्यक्तियों की, सात आदतें किसकी, असफल सफल नहीं असफल। एक आदत है उठना और बेड पर ही रहना, बेड पर ही रहना, उठने के बाद बेड पर ही रहना, हाँ जो भी है, तो वो एक असफल लोगों की आदत है। एक होता है लेट उठना, पर जो लेट उठते हैं वो भी सफल होते हैं, ऐसा स्टडी से पाया गया। ये आदत है कि उठ गए परंतु आलसवश बेड को छोड़ना नहीं, ये कारण बताया है एक असफलता का। तो कोई भी आदत, कोई भी संस्कार जो व्यर्थ है उससे मुक्ति अर्थात कर्मातीत, ये तीसरी परिभाषा है कर्मातीत की। चौथी परिभाषा ये भी एस, चौथा स्वस्थिति हिलना, परिस्थितिवश संगठनवश सेवावश, तीन चीजें बताई। परिस्थिति स्थिति को अगर हिला दे, संगठन यदि स्थिति को यदि हिला दे, और सेवा यदि स्थिति को हिला रही है, ये तीनों ही जब स्वस्थिति को हिलेगी और डगमग होगी स्थिति, तो ये भी बंधन है, इस बंधन से मुक्ति अर्थात कर्मातीत। ये कैसे करेंगे, संगठन हमको हिलाए नहीं, क्योंकि संगठन अर्थात वन वन की काठी है, यहां तो ऐसे ऐसे एक एक क्या कहेंगे उसको, नमूने या एक एक नग अच्छा शब्द बोलना है कोई एक ऐसे ऐसे सारे एकत्र हुए हैं, सारे विश्व भर के सैंपल, विशेष आत्माएं तो है पर हरेक के रंग अलग अलग है, एक 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 अपने आप में टीचर है, एक 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 अपने आप में, हमारे साथ में उनके क्या हिसाब है जन्म जन्म के पता नहीं, इतने सारे एकत्र हुए है तो सभी महान आत्माएं, परंतु संस्कार तो भिन्न भिन्न है सबके। इसलिए सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस कभी कभी संगठन से ही हो जाता है, सेवा से हो जाता है या परिस्थिति से हो जाता है। परंतु इसको ऐसा न समझते हुए, ये जैसे हमेशा मुरलियों में आता है, पेपर किस लिए आ रहा है, पास होने के लिए। परिस्थिति किस लिए आ रही है, शक्तिशाली बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। पेपर आ रहा है हमको कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, नहीं परिस्थितियों में कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट लेना है तुमको, इसलिए परिस्थिति पेपर आ रहे हैं। और पेपर उसके पास ही ज्यादा आते हैं जो ज्यादा पहलवान हो। तो चौथा जिससे मुक्त होना है कर्मातीत की परिभाषा में, ये सारे हिलना डुलना डगमग होना स्वस्थिति का अर्थात कर्मातीत नहीं, यह भी एक बंधन कहा बाबा ने। हिल जाना, डिस्टर्ब हो जाना, नाराज हो जाना, उदास हो जाना, यह बंधन है। और पांचवा बताया सिकनेस या व्याधि एस। एक है शरीर की व्याधि, अब जन्म जन्म के हिसाब है तो शरीर की व्याधि तो आएगी, परंतु जब व्याधि आए और व्याधि का चिंतन करते रहना, यह बंधन है। व्याधि में क्या करना है? शुभ चिंतन, श्रेष्ठ स्वचिंतन, शुभ चिंतन, ज्ञान का चिंतन, ये तीन चीजें बताई। जब बीमारी आ जाए तो क्या करो? ज्ञान का चिंतन करो। पर हम क्या करते हैं, बीमारी आने के बाद जो भी मिलने आता है उसको पहले विस्तार से बताते हैं क्या क्या हुआ, कितनी बार उसको रिपीट करते होंगे एक ही ऑडियो। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर पर फ्रैक्चर हो गया, तो उससे जो भी मिलने आएगा पूरा डिटेल। हाँ वो और डिटेल में, और डिटेल में। तो जो बीमार व्यक्ति है और जितनी बार वो बता रहा है उतनी बार वो और उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रहा है अच्छे से एकदम। अगर वो एक्सीडेंट में किसी दूसरे की गलती है वो भी फिट कर रहा है, और फिट कर रहा है कि उसने ऐसा किया और भाग गया और गाड़ी का नंबर भी नहीं पता क्या चला, और हम इधर फ्रैक्चर में बैठे तो कितना रिपीटेशन हो रहा है वो अंदर ही अंदर। तो ये भी बाबा ने कहा ये बंधन है, व्याधि बंधन है। व्याधि का चिंतन करना, बीमारी का चिंतन करना, बीमारी का वर्णन करना, ये बंधन है। बीमारी में क्या करो? ज्ञान चिंतन। बीमारी में क्या करो? शुभ चिंतन। बीमारी में क्या करो? गीत सुनो, जो भी, पर अपनी स्थिति को महान रखना है, नीचे नहीं आ जाना है। क्योंकि बीमारी एक ट्रिगर हो जाती है कभी कभी व्यर्थ के लिए, विकार के लिए भी। तो ये पांचवा। उसके बाद में छठवा, एस स्पोर्ट्स, अर्थात खेल। जो भी कुछ होता है उसको क्या समझो? स्पोर्ट। इसको बाबा ने कहा हद की कामनाएं नहीं रखो। इस कर्म क्षेत्र में ये हद की कामना रखना, इससे भी मुक्ति अर्थात कर्मातीत। जो भी कुछ यहां हो रहा है सब खेल हो रहा है, बस इसी से हम डिटैच हो पाएंगे, नहीं तो हम तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुखी होते हैं। खेल हो रहा है, कितना मजा आ रहा है, आत्माएं क्या क्या कर रही है, नए नए हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, अच्छा है। चुप तू हो जाए, जिसको जिसको गालियां देना है आ जाओ जल्दी जल्दी, गाल दिया दो और जाओ, हम फ्री हो रहे हैं। जल्दी चुप करो, आह्वान करो, हे आत्माओं आ जाओ जल्दी, दुख दे दो, गालियां दे दो, निंदा कर लो और हमको फ्री करो ये बोझ से। पर वो आएंगी नहीं, वो आएंगी अपने टाइम पर तुम्हारे हिसाब के, तुम्हारे इच्छा से नहीं आएगी वो अपने समय पर आएगी। तो स्पोर्ट्स, खेल समझना। इसमें एक्चुअली दूसरा शब्द है हद की कामना से मुक्ति। बाबा ने कहा हद की कोई भी कामना नहीं रखो, इससे मुक्ति। फिर नेक्स्ट है छठवा, कर्म संबंध से मुक्ति। वो उसमें, क्योंकि ये मुरली जो है, ये जो मुरली हम कह रहे हैं ना, कोई एक मुरली नहीं है, टुकड़े टुकड़े लिए हुए हैं, इसके लिए थोड़ी बहुत रिपीटेशन है, टुकड़ा टुकड़ा है। ये पैराग्राफ अभी दूसरा चालू हो रहा है, यहां पे बाबा ने पूरा फोकस जो किया है कर्म संबंध के बारे में। कर्म संबंध से मुक्ति, कर्म में आओ परंतु बंधन ना बन जाए वो संबंध, आसक्ति ना हो किसी कर्म के प्रति, नहीं तो उदासी होगी उसमें अगर वो नहीं हुआ तो। हमारी इच्छा के अनुरूप तो कुछ ना कुछ होगा, कर्म किया और कर्म से न्यारे हो गए बस। कोई भी कर्म किया, कोई भी सेवा की, नहीं तो सेवा ही बंधन बन जाती है कि मुझे वही सेवा चाहिए, वही सेवा अच्छी लगती है। अगर कोई कहे वो नहीं, आज से कल से वो करना है, तो फिर दुखी। आज ये सेवा कल वो सेवा, सेवा सेवा है। चाहे झाड़ू लगाने की सेवा है या हजारों के सामने भाषण देने की सेवा है, पुण्य किसमें ज्यादा है? पुण्य किसमें ज्यादा है? झाड़ू मारने में। झाड़ू लगाते समय उसको अहंकार हो जाए तो मेरे जैसा झाड़ू कोई नहीं लगा सकता जीरो, तो आप इसमें कर्म क्या है उससे कोई संबंध नहीं है, भावनाओं की बात है, स्थिति की बात है, निरंकारिता निर्माणता की बात है। संडे, अभी जो आने वाला संडे है, उसमें बाबा ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है, माधव सिंह सोलंकी। उनको कहा ट्रस्टीशिप, निर्माण भाव, ये जो निर्माणता है ना, इसकी जो राजनीति है ये सबसे श्रेष्ठ नीति है, और सारा विश्व इस राजनीति को भारत से कॉपी करेगा। निर्माणता की नीति, निर्माणता की राजनीति। भगवान सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ। ऐसी राजनीति सिखाता है पावरफुल, ये सबसे बड़ी राजनीति है, दोनों कहो उसको। तो कर्म संबंध, उसके बाद में है ये छठवा था या सातवा था शायद, ये सातवा था। हाँ अभी आठवा, कर्म, देह, देह के संबंध और पदार्थ, ये तीन चीज, देह, देह के संबंध और पदार्थ। पदार्थ में भी आसक्ति नहीं, देह में भी नहीं, और देह के संबंधियों भी नहीं। ये तीनों से जब मुक्ति होगी, ये बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था है। ये कहने को तो बहुत आसानी से हम कह रहे हैं, परंतु बहुत ऊंची फिलॉसफी, बहुत ऊंची बातें। लास्ट स्टेज जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत, फाइनल स्टेज, ये सबसे मुक्त हो जाए। और लास्ट पॉइंट है इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या, इसको हम कहेंगे एस अर्थात सर्व इच्छा। बाबा ने कहा सर्व इच्छाओं से मुक्ति। ये भी इच्छा नहीं कि हमने ये किया तो हमको वो मिल जाए। बाबा ने कहा कैंची से काट दो। कौन सी कैंची बोली, कौन सी कैंची प्रभाकर भाई? एक कैंची का नाम लिया बाबा ने, उस कैंची से सब काट दो। कौन सी कैंची? उस कैंची से कर्म के सारे बंधन को काट दो। इधर उधर का नहीं बताओ, जो मुरली में वो बताने है, पूछ रहे हम। एक शब्द, अच्छा,
अच्छा बनने की इच्छा।
बाबा अच्छा, वो भी अच्छा, परिस्थिति भी अच्छी। बाबा अच्छा, परिस्थिति अच्छी, मैं भी, जो हो रहा है वो भी अच्छा। ये जो यही कैची है, ये कैची में क्या है, पॉजिटिविटी समाई है। जैसे हमारे सामने कोई परिस्थिति, हमने अंतर मन से उसे स्वीकार नहीं किया है, संघर्ष है, विद्रोह है अंदर। और जब मैं स्वीकार कर लेता हूं ये सत्य है, जैसे किसी को बीमारी आ गई, बड़ी बीमारी, अचानक कैंसर पता चल गया, पहले तो मानने को ही तैयार नहीं हो कि मुझे हो सकता है ऐसा कुछ, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसा भी है क्या। जैसे किसी का कोई दोस्त है और अचानक वो दोस्त धोखा देते, आज तक रोज बातें कर रहे थे, आज बातें करना बंद, एकदम नफरत, अब तक मर मिटने को तैयार थे, अभी मरने को तैयार है ऐसा, और व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि ऐसा भी हो गया, ऐसा भी कर सकता था, वो दुख हो गया है। तो पहले तो जो भी परिस्थिति है जीवन में, वो परिस्थिति अच्छी, मैं अच्छा, बाबा अच्छा, ये तीनों अच्छा जब होंगे तब ये कैंची का काम करेंगे, कर्म बंधन कटेंगे। ये बाबा ने यहां पर इच्छा के वहां पर कहा। तो ऐसी 9 ऐसे कर्मातीत के, एक मुरली नहीं है कहा, बहुत सारी मुरलियां है, ढेर सारी यहां वहां के टुकड़े। तो सबसे पहली बात एक बार रिवाइज करते हैं पूरा करने से पहले। सबसे पहले सेल्फ प्राइड, एस, एस अर्थात सेल्फ प्राइड, मेरे मेरे का देह अभिमान, सब मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, अपना ही सोचते रहना बस, सबसे पहला। दूसरा स्वार्थ, एस अर्थात स्वार्थ, सेल्फिशनेस कहो या स्वार्थ, एस, अलौकिक स्वार्थ, लौकिक स्वार्थ, कर्म और संबंधों में स्वार्थ। संबंध में जितने निस्वार्थ संबंध हो उतने अच्छे, नहीं तो ये डिजिटल वर्ल्ड में आधे से ज्यादा झगड़े तो इसकी वजह से, हमने मैसेज किया इधर दिख रहा है रेड, पढ़ लिया पर उत्तर नहीं आया, संबंध बिगड़े, जानबूझ के नहीं देता है ये उत्तर, संबंध बिगड़े। कई बार तो पढ़ता ही नहीं, देखता भी नहीं। हम तो करते रहते दिन रात, ये तो देखता ही नहीं कभी। कोई रिस्पांस नहीं, तो ये भी संबंध बिगड़ते, क्योंकि बहुत इच्छाएं होती है वो भेजने के पीछे भी। तीसरा स्वभाव संस्कार, व्यर्थ स्वभाव संस्कार, जन्म जन्म के या इस जन्म के बच्चे कुछ है। चौथा स्वस्थिति, एस स्वस्थिति न हिलना, ये स्वस्थिति हिलना ये बंधन है, न हिलना इस बंधन से मुक्ति। पांचवा व्याधि, सिकनेस, व्याधि शरीर की जब बीमारी हुई तब सबसे बड़ा पेपर जीवन में आता है, तब पता चलता है कौन कितने पानी में और कौन कितना योगी है। हिल जाते हैं लोग, बड़े बड़े योगी हिल जाते हैं बीमारियों में, छोटा सा बुखार हिला देता है, गला बैठता है तब भी हिल जाते, छोटी सी बीमारी है, बॉडी पेन हिल जाता है, बड़े बड़े विचार आने लगते हैं, कमजोरी की आ गई, अब हमारा कौन देखेगा बुढ़ापे में से लेके, तो सारे विचार आने लगते और दूसरे दिन एकदम ठीक भी हो गए, पर वो विचार तो आया और वो फिर आएगा जब अगली बार बीमार पड़ेंगे तो व्याधि। छठवा खेल समझना, स्पोर्ट्स, बाबा ने कहा जो हो रहा है सबको खेल समझो और हद की कामना से मुक्त हो जाओ। सातवा संबंध, कर्म संबंध। आठवा देह, देह के संबंध और पदार्थ, इनसे भी मुक्ति। और लास्ट इच्छाओं से मुक्ति। बाबा ने कहा तुम्हें बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, कौन सी? अच्छा बनने की। तुम्हें बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, कौन सी? जो बाप की इच्छा वो मेरी इच्छा। तुम्हें बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, कौन सी? बाप समान बनने की। तुम्हें बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कोई इच्छा नहीं, ये इच्छा होनी चाहिए। कौन सी इच्छा? कोई इच्छा नहीं है। जैसे उस दिन भी बताया था, लास्ट एक व्यक्ति है शिव की बहुत भक्ति करता है, प्रसन्न होते वरदान मांग, तीन मांग सकता है। वो कहता है मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, बहुत परेशान करती है, दिन रात मुझे तड़पाती है, क्या क्या करती है, उसको मार दो। शिव कहते ततास्तु, पत्नी मर जाती है। अरे दुख होता है, सताती तो बहुत थी पर ध्यान भी तो बहुत रखती थी, अब उसकी सारी अच्छी बातें याद आने लगती है, अब मैं कैसे रहूंगा इसके बिना, इसको दूसरा वरदान, इसको जिंदा कर दो। अब दो तो खर्च हो गए, एक ही बचा है, जिंदा हो गई, मांग लिया उसने तो तीसरा, तो वो कहते वेट आई वांट टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दो, कुछ भी मैं गलती कर रहा हूं ऐसे, अच्छे अच्छे वरदान मेरे जा रहे हैं हाथ से। तो वो रात भर सोचता है, दूसरे दिन आता है, शिव कहता है बोलो। वो कहता है आप ही सजेस्ट करो कुछ, मुझे तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। शिव कहते मेरे पास एक ऑप्शन है, तुम ऐसा करो, एक ऐसा वरदान मांगो कि मुझे कोई भी इच्छा ना हो आज से बाद, ये वरदान मैं तुमको दे दूंगा ना, तुम सुखी हो जाओगे, कोई भी सांसारिक इच्छाएं ना हो। और वो उसको वरदान दे देता है और वो सुखी हो जाता है उसके बाद। तो सबसे अच्छा वरदान कौन सा है? कि कोई इच्छा नहीं संसार की, ये वरदान तुम दे दो। अब डरदानी है, वो वरदान दे देगा। तो ऐसी ये नौ बातें थी कर्मातीत की। अच्छा, ओम शांति।
बाबा खड़े हैं, बाबा।